हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय राधा रसि हरि राधा रसि हरि राधे। श्रील प्रभुपाद प्राण धन हे, श्रील प्रभुपाद प्राण धन हे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय विष्णु पाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सतें तिला प्रविष्ण कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण अरविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय विष्णु पाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सतें तिला प्रविष्ण कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की पंढरपुर धाम की गंगा मैया जमुना मैया चंद्रभागा मैया की भक्त देवी वृंद देवी तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन कलियुग धर्म की हरे कृष्ण महामंत्र की शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा रास विहारी की सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गिरिराज गोवर्धन की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. तो यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवगण श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण जी गौर निताई श्री प्रभुपाद और वैष्णव और वैष्णवी माताओं सभी से मेरा नम्र प्रार्थना है आप सभी हमें आशीर्वाद प्रदान करें क्योंकि श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और मैं मल से भरा हूँ परंतु एक सेवा अधिकारियों ने दी है जो मेरे शुद्धिकरण के लिए है और मेरे वाणी से जो भी प्रकट हो आपके हृदयों को मन को आह्लाद प्रदान करें आपकी भक्ति में वर्धन करें और कोई त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिए हरे कृष्णा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नमः पंकजनाभाय नम पंकजमालिने, नम पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय, राधिकाये तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय, तदभक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं, पंगुं लंग्रयते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे भागवतम के दशम स्कंद से दशम अध्याय से श्लोक 20, 21 और 22। अध्याय का नाम है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो तीन श्लोक यहां एक साथ है, तो हम दो श्लोकों को केवल पढ़ेंगे, रिसाइट करेंगे और अंतिम श्लोकों को दोहराएंगे। यदि मो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमा लुप्तो न विवस सम आत्मानं विजानीता सुदुर्मदो अतो हर्तस्थावरतां स्यातां नैव यथा पुनः स्मृति स्यान्मत् प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सन्निधं लब्धा दिव्या शरच्छते वृत्ते स्वलोका वृत्ते स्वरलोकतां भूयो लब्धा भक्ति भविष्यता वासुदेवस्य सन्निधं लब्धा दिव्या शरच्छते वृत्ते स्वर्लोकातां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यता वासुदेवस्य सन्निध्यं लब्धा दिव्या शरच्छते वृत्ते स्वर्लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यता। पढ़िए आप में से। माता जी देवस्य सन्निध्यम् लब्ध्वा दिव्या शरच्छते वृत्ते स्वलोकताम्बूयो लब्धा भक्ति भविष्यति। शब्दार्थ यत् चूंकि इमो ये दोनों तरुण देवता लोकपालस्य महान देवता कुबेर के पुत्र भूत्वा होकर तमः लुप्तो तमोगुण में बुरी तरह से मग्न नहीं विवाससम बिना किसी वस्त्र के पूरी तरह नंगे आत्मानम अपने शरीरों को विजानीता जानते हुए कि नंगे है सु दुर्मदो मिथ्या अहंकार के कारण अत्यंत पतित अतः इसीलिए अर्हता पात्र है स्थावरताम वृक्ष जैसी गतिहीनता स्याताम हो जाए नहीं एवं इस तरह यथा जिस तरह पुनः फिर स्मृति याद स्याद बनी रहे मत प्रसादेन मेरी कृपा से तत्रापि इसके अतिरिक्त मत अनुग्रहात मेरे विशेष अनुग्रह से वासुदेवस्य भगवान का सान्निध्यम संगति साक्षात्कार लब्ध्वा प्राप्त कर दिव्य शरत शतेवृत्ते देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद स्वर्लोकताम स्वर्ग लोक में रहने की इच्छा भूयः पुनः लब्ध भक्ति अपनी भक्ति को पुनः प्राप्त करके भविष्यता हो जाएंगे। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ये दोनों युवक नल कुबेर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र है, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी ये नहीं समझ पा रहे कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नंगे होते किंतु चेतन नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य, वृक्षों में चेतना नहीं होती क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु नारद मुनि चाहते थे कि नलकुबेर तथा मणिग्रीव की चेतना अर्थात स्मृति बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी उस परिस्थिति को न भूल सके जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कर सके और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। स्वर्गलोक का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भोगी है किंतु वे सब भक्त है, इसलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण कृष्ण के साथ अपने संबंधों को भूल जाते हैं, आसुरिम भावमाश्रिता। किंतु देवता नहीं भूलते। दो भूत स्वर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृते देव आसुरस्त आसुरस्त विपर्यय। पद्म पुराण। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्र भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकुलुषित रहता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनारुत्तम। कर्म मिश्र भक्ति से मनुष्य स्वर्गलोक जाता है, ज्ञान मिश्र भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है, और योग मिश्र भक्ति से वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान योग पर आश्रित नहीं होती, क्योंकि नहीं रहती, क्योंकि यह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इसलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं अपितु विमुक्ति कहलाती है, और पांच प्रकारों की मुक्तियों सायुज्य सारूप्य सालोक्य साष्टी तथा सामीप्य को पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने को लगाता है। अनुकुल्लेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। नारद मुनि ने प्रकारांतर से मणिग्रीव तथा नलकुबेर को अपने तथाकथित छाप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने वांचा नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य अनंत कृष्ण महाराज से मैं आशीर्वाद चाहूँगा कि आपके सामने मैं कुछ बोल सकूँ। इन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा न्यू भक्त ट्रेनिंग भी चालू हुआ था, तो हमारे गुरु हरि है। सभी महानुभाव वैष्णव को प्रणाम। तो इस अध्याय प्रसंग इस प्रकार है, हम सभी सुनते आ रहे हैं, ये बड़ा विशेष अध्याय है, क्योंकि यहाँ पर भक्त और भगवान दोनों की कृपा बरस रही है। तो इस प्रसंग में ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र, और वहाँ शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी उल्लेख करते उनके पदवी का कि ये दोनों शिवजी के पार्षद हैं। केवल भक्त ही नहीं तो पार्षद, पार्षद मतलब जो एकदम नजदीक रहता है। तो ये जैसे भगवान के पार्षद भगवान के साथ आते हैं, वैसे शिवजी के दो पार्षद थे। इतनी बड़ी पदवी और इतना बड़ा पद उनको प्राप्त था, परंतु हम देखते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्यों में चार भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो भगवान के भक्त और अन्य देवताओं के भक्तों में यह स्पष्ट रूप से अंतर या देखा जा सकता है कि देवताओं के भक्त भले कितने गुण संपन्न, प्रतिष्ठित, बहुत बड़े बड़े पद पर हो, परंतु एक्चुअली भक्ति ये शब्द देवताओं की भक्ति के लिए लागू ही नहीं होता है। भक्ति शब्द का अर्थ ही है भगवान कृष्ण के भक्त, बस। क्योंकि स्वामी एक है, बाकी सब दास है, तो भक्ति किसकी होगी? शिवजी भी भगवान के ही भक्त हैं। हाँ, सारे देवता भी प्रभुपाद वर्णन करें कि जो देवता लोग हैं उनको देवता इसलिए कहा जाता है कि वो भगवान के भक्त हैं। देवता ये पदवी तभी मिलती है जब भगवान के भक्त होते हैं। तो भक्ति ये केवल शब्द भगवान के लिए लागू होता है, और देवताओं के साथ जो भी होते कहते कि हम भक्त है, परंतु ये व्यापार होता है। कुछ प्राप्ति की अभिलाषा से ही देवताओं के दरबार में या देवताओं के शरण में जाते हैं, और यहां भक्ति की शुरुआत में पहला शब्द आता है अन्याभिलाषिता शून्यम। कितना बड़ा अंतर है। अभिलाषा से युक्त जितने देवताओं के भक्त हैं और भगवान के भक्त है अन्याभिलाषिता शून्यम। तो इन दो पुत्रों ने अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा और धनी के पुत्र थे, इसलिए कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं में कही दिया है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ये दमाद मद अपमान। ये चार चीजें क्या है? मद, नशा। जब किसी को कुछ चीज का नशा चढ़ जाता है तो उसे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है। और इन लोगों को तो दो प्रकार का नशा चढ़ा था, पहले अपने पद का, है ना, इतना बड़ा पद था, और दूसरा वो नशा तो था ही, उसके ऊपर और नशा कर लिया वारुणी का। तो जब ती डबल नशा हो जाए, पहला नशा करने वाले को तो आजे आजू बाजू दाएं बाएं पीछे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन डबल नशा करने के बाद उसको खुद को भी नहीं दिखेगा, ऐसा ही लिख रहे हैं, क्योंकि इतनी नशा चढ़ गई कि उनको खुद की सुध नहीं है कि हम नंगे हैं, है ना। सामान्य दुनिया में हम देखते कोई बेवड़ा दारू पी लेता है तो कम से कम कपड़े तो पहने रहता है कि नहीं, भले गटर में पड़े या अपने ही मलमूत्र में लपेटे, परंतु कपड़े पहने रहता है। लेकिन यहां पर ये लोग डबल नशा था, और तीसरी भी नशा और चढ़ गई। साथ में कौन थे? सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। देखिए सब कुछ आ गया, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, चारों नशा एक साथ है, केवल एक नशा नहीं है। तो सोचिए चार चार नशा जिसको चढ़ जाए उसको क्या सुधरेगी, और कौन आया न कौन गया किसी का भान इन दोनों को नहीं था। और इतने नशे में धुत महाराज मुनि सामने आ भी गए तभी भी उनको लगता है कौन है, होगा कोई, ज्ञान नहीं होता ना, क्योंकि व्यक्ति की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए सही गलत कौन है क्या। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पहला यही प्रश्न पूछते हैं, इस अध्याय की शुरुआत इसी प्रश्न से होती है। क्या प्रश्न है? कि महान एवं शक्तिशाली, क्या कहा मैंने, दो शब्द इस्तेमाल किए सुखदेव, महान और शक्तिशाली। कोई लोग सोचते हैं साधु है ना, गेरवा कुछ नहीं, खाने पीने घर भी, ऐसे लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं, इनके पास शक्ति नहीं, पैसा नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन संसार में सबसे अधिक शक्ति भगवान के बाद यदि किसी के पास है तो भक्त के पास होती है, चाहे वो धन भी हो किसी भी चीज की। प्रभुपाद जी लिखते कि शुद्ध भक्त के पास सारी अष्ट सिद्धियां होती है, भौतिक धन छोड़ दिए सारी अष्ट, प्रभुपाद के पास भी थी, प्रभुपाद ने दिखाई एक दो बार, है ना। प्रभुपाद कहीं चल रहे थे और किसी ने अनार की बात छेड़ी तो प्रभुपाद बोलते सबसे बेस्ट अनार कहाँ मिलते, अफगान में, है ना। मैं सुना ऐसा, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने एक हाथ घुमा उठाया और दूर लंबा किया और अफगान से अनार लेके भक्तों को दिखाया, ऐसा मैं सुना था। तो शुद्ध भक्त के पास सभी अष्ट सिद्धियां होती है, परंतु अपने सिद्धियों को कभी प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि शुद्ध भक्त का एकमात्र कर्तव्य होता है कि अपने प्रभु का गुणगान, अपने प्रभु का प्रचार, अपने प्रभु का नाम संसार में फैलाए। उसे अपने नाम की और अपने प्रतिष्ठा की, अपने पद की गरिमा को फैलाना नहीं होता है। इसीलिए पहला ही शब्द शुद्ध भक्ति का अन्याभिलाषिता, उसकी अन्य अभिलाषा मतलब उसकी कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं होती, उसकी एकमात्र अभिलाषा होती है अन्याभिलाषिता शून्यम। बहुत सुंदर व्याख्या समझाते रूप गोस्वामी। शून्य का अर्थ ये नहीं कि अभिलाषा इच्छा ही छोड़ दे, नहीं, शून्य शब्द का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से शून्य हो जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं यदि इच्छा ही खत्म हो जाए तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पत्थर। पत्थर की कोई इच्छा नहीं होती है। तो आत्मा है तो उसके दो गुण है, बाकी कुछ भी नहीं उसके पास, एक है इच्छा और एक है स्वतंत्रता, डिजायर एंड इंडिपेंडेंस। तो इच्छा है तो कौन सी इच्छा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनारुत्तम, एवं ज्ञान पाने की भी इच्छा नहीं करता है, ज्ञान कर्मादि अनारुत्त, उससे भी अनावृत्त हो जाता है, ज्ञान कर्मादि अनावृत्त, अनुकूल्य न कृष्णा। और भक्ति ऐसी नहीं कि इंडिपेंडेंट करता है, इंडिपेंडेंट भक्ति हो ही नहीं सकती है। स्वतंत्र भक्ति हो ही नहीं सकती है। अनुकूलेण कृष्ण अनुशीलनम, जो भगवान के अनुकूल भक्त है, हा? प्रेमी भक्त है, उनके अनुगत्य में ही भक्ति करनी होगी। उदाहरण बहुत सारे देते तो जब तक हम दास दास, इसलिए हमारा टाइटल दास दिया जाता है, दास दासानु दास। और चैतन्य महाप्रभु ने इस शुद्ध भक्ति को अच्छे तरह से सिखाया। भगवान कृष्ण ने तो भक्ति की परिभाषा भगवद गीता में बता दी, भक्ति कैसे करनी है, लेकिन सिखाया नहीं, केवल ज्ञान दिया। लेकिन भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर स्वयं प्रैक्टिकल के उदाहरण से भक्ति सिखाई और भक्ति की परिभाषा दी। ये तो अन्य अभिलषिता है, उससे भी बढ़कर दी। क्या? ना हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी गृहवतीर्ण यतीर्ण वनस्थो किंतु प्रोद्यान अखिलम गोपी भरतुर पदकमलयो। एक बार दास नहीं बोला, दास दासानु दास। तो शुद्ध भक्ति हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम एक शुद्ध भक्त के अंतर्गत दास दास बनकर सेवा करेंगे। तो यह अंतर होता है एक शुद्ध भक्त में और देवताओं के भक्त में, क्योंकि देवताओं की भक्ति करते करते उन्हें बहुत सारी सिद्धियां, वरदान, धन दौलत प्रतिष्ठा सब मिल जा, क्योंकि इसी के लिए तो भक्ति करते हैं। अभी रावण कैलाश को उठाकर पागल था क्या, इतना बड़ा पर्वत उठाकर भक्ति करने के लिए? क्या चाहिए था उसको? क्या चाहिए था? वरदान चाहिए था कि मैं तीनों लोकों का राजा बनूं, हिरण्यकश्यपु, मृत्यु ही प्राप्त ना हो, इसके लिए वो तीनों विश्व का राजा विष्णु से समान बनना चाहता था, भगवान के समान। तो इन जब वे भक्ति स्टार्ट करते हैं तो मन में बहुत बड़ी अभिलाषा होती है। तो उसमें से एक कर्म मिश्रित में पहला उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का, बाद में शुद्ध भक्त बने, लेकिन जब भक्ति प्रारंभ की उन्होंने तो मन में अभिलाषा रखकर, क्या? मेरे पिता के प्रपिता से भी बढ़कर मुझे राज्य प्राप्त हो। मतलब प्रपिता कौन है उनके? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू, स्वयंभू के पुत्र उत्तानपाद, उनके बेटे ध्रुव। तो इस प्रकार उनके प्रपिता थे, उनसे बढ़कर राज्य। तो इनका नाम कर्म मिश्र भक्ति में आता है। ज्ञान मिश्रित भक्ति में चतुष्कुमार, पहले ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान पद पर प्राप्त होना चाहते, लेकिन बाद में भक्त बन गए। तो ऐसे चार प्रकार की भक्ति है। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेन भक्ति योगे न यजतम पुरुषम परम। भले हमारे अंदर कामना हो, अकामना हो, कोई कामना भी नहीं है, मोक्ष की कामना हो, तभी भी हमने किसका शरण जाना चाहिए? यजते परमम पुरुष। परम पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण। भले हमें भौतिक, इसलिए हमारे संस्था में आने वाले हम सब लोग, बहुत सारी कामना अंदर होती है। भले प्रभुपाद का फिलॉसफी बढ़कर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन इधर ये डाइवर्ट होता है, लेकिन ये डाइवर्ट नहीं होता है जल्दी, क्योंकि हृदय में मोर यही अभिलाष अमेरिका दियो वास, है ना। तो हम भक्ति में प्रभुपाद के ग्रंथों से, कितना भी पतित, कितना भी नीच नालायक व्यक्ति हो, प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ेगा जरूर कन्विंस होता है। और पूरी वर्ल्ड में इस्कॉन 99.9% पुस्तकों से ही कन्विंस हो रहा है ना। एकादी कोई भुलावट का भगवान का भक्त भगवान की कृपा से बन जाए तो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथों से व्यक्ति, चाहे वो ज्ञानी हो, अनपढ़ हो, मायावादी हो, कोई भी हो, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ेगा तो जरूर भक्त बनता है। कभी ना कभी, इमीडिएटली नहीं, कभी ना कभी तो भक्त बन ही जाता है। लेकिन हृदय में अशेष कामना वृद्धि माझी मोर, क्रोधी दम्भ परायण, हमारे आचार्यों ने जो भजन लिखे एकदम सटीक भजन लिखे, भावार्थ अनुवाद एवरीथिंग इज उन भजनों में। बोलते हैं कि सारे हमारी फिलॉसॉफी यदि देखनी है तो जस वैष्णव आचार्यों के, विशेषकर भक्तिनाथ ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर, इन दो आचार्यों के भजनों में हमारी संपूर्ण फिलॉसॉफी कम शब्दों में बहुत भावार्थ भरा है। तो ये अशेष कामना हमारे हृदय में होती है, परंतु भगवान इतने दयालु है। भगवान के भक्ति का एक बड़ा सुंदर बात यह है कि भगवान के भक्ति करते हुए भले हमारे हृदय में कामना हो तो, परंतु भगवान ये कामना पूरी करते हैं और उसे क्या करते हैं? जड़ से मिटा देते हैं। लेकिन देवताओं की भक्ति करने से यह कामना और प्रज्वलित होती और बढ़ती है, मोर और मोर, और चाहिए है ना। तो यह अंतर है भगवान की भक्ति और देवताओं की भक्ति में, कि देवताओं की आप भक्ति कितनी भी बढ़िया से करिए लेकिन हमारी हृदय की जो कामेच्छा है, पिशाचिनी कहा गया उसे, क्या कहा गया है, पिशाचिनी। एक होती है डाकिनी, एक होती है पिशाचिनी। प्रभुपाद बोलते हैं पल पल लहू चूसे। तो जो पिशाचिनी है ये भौतिक दुनिया का भोग, इसलिए कहते हैं ना ये संसार अज्ञानमय अंधकार है पूरी तरह, है ना, अज्ञानमय। इसलिए भगवत गीता में भगवान की भक्ति प्रारंभ करने से क्या होता है, तेषामेवानुकम्पार्थम अहम ज्ञानम अजम तमा नाशयम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान इस अज्ञानमय अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा दूर करते हैं, नहीं तो इस माया जगत के अंधकार को कोई कितना भी टॉर्चर लाइट सब जला ले, लेकिन यह अज्ञान का अंधकार नहीं दूर होगा। यह अज्ञान का अंधकार केवल भगवत भक्ति, भगवान की कृपा से और भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही होता है। इसलिए हम प्रार्थनाओं में पहली प्रार्थना मंगलाचरण में क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन विन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो केवल गुरु ये हमारे अज्ञान की आंखों को हटाकर ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करता है, तभी हमें सत्य और असत्य का परिचय होता है, तभी हम उसका डिवाइड कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, तब तक नहीं। हाँ, नहीं तो हम ही संसार में, तो हम सब तो पढ़े लिखे हैं, है ना, विशेषकर इस्कॉन में आने वाले सभी, हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी डिजायर होती है ना, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अमेरिका जाएंगे, डॉलर कमाएंगे, क्या बहुत बड़ी बड़ी इच्छा होती है। जितना पढ़ा भौतिक दुनिया में होता है ना उसकी उतनी डिजायर होती है ना, जितनी बड़ी डिग्री उससे दो गुना उसकी डिजायर है ना। अनपढ़ आदमी थोड़ी इच्छा करेगा अमेरिका जाना है, वो तो बंबई आने तक ही नहीं सोचता है। तो ये मटेरियलिस्टिक जो एजुकेशन है या जो भी पद प्रतिष्ठा है, ये व्यक्ति को और गौरवान्वित कहते हैं। तो ये दोनों कुबेर के पुत्र देवताओं का खजांची, तो इतना बड़ा पद और ऊपर से इतने बड़े धनी व्यक्ति के पुत्र, तो नशा तो चढ़ना स्वाभाविक है ना। और नशे में व्यक्ति क्या करता है, पहला तो धन का ये दोष है कि जिसके पास ज्यादा धन आता है वो दूसरों को क्या करता है, कम लिखता है, क्या करता है। यदि देखिए आप दो मित्र है कॉलेज में पढ़ने वाले, और एक को बढ़िया से पोस्ट मिल गई या बढ़िया से नौकरी मिली, 5 लाख या 12 लाख का पैकेज मिल गया, और एक को साधारण 15,000-10,000 की नौकरी लगी। दोनों मित्र थे, बढ़िया से कॉलेज में 4-7 साल पढ़े, लेकिन जैसे ही एक बड़ा पद पे चला जाता है, एक छोटा सा नौकरी करता है, तो वो बड़ा वाला क्या करता है, अपने मित्र को मित्रता के भाव से नहीं देखता है, तुच्छता क्या है, कौन जो है। तो ये भौतिक संसार का भाव ऐसा, यहां पर कहते कि धन में 14 दोष है, इसमें से एक है कि दूसरों को तुच्छ लिखना शुरू कर देता है, ये धन का स्वभाव है। तो ये दोनों पुत्रों को इतना नशा चढ़ गया कि नारद मुनि जैसे महान और शक्तिशाली संतों को उन्होंने नजरअंदाज किया, और वैसे एक वैसे नंगे खड़े रहे। तो संत का स्वभाव है सबका कल्याण करना, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। तो यहां पर परीक्षित महाराज वो भी कहते हैं कि क्या शत्रुता थी नारद मुनि को इतना बड़ा दंड दे दिया, साधु किसी का शत्रु कभी नहीं हो सकता, अपने दुश्मन, उनका तो दुश्मन होता ही नहीं, उनका अवकल्याण करने वाले का भी साधु कभी भी दुश्मन नहीं होता है। तो संत और साधु का स्वभाव ही है जगत कल्याण करना। तो जब नारद मुनि ने देखा कि ये लोकपाल के पुत्र है, साधारण नहीं है, जितना बड़ा पद होता है ना संसार में, लोग उस व्यक्ति को उतनी आशा और उतनी आकांक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि ये बड़ा व्यक्ति है, उसका आचरण, उसका विचार, उसकी रहन सहन, उसका चलना, उसका बोलना। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। तो ये लोग सामान्य नहीं है, इनको भगवान ने इतना बड़ा पोजिशन लोकपालों का दिया है, संपूर्ण देवता लोग सारे सृष्टि का संचालन भगवान की अध्यक्षता में जो कर रहे हैं, तो इनके पुत्रों को अपनी बाप की, अपने पिता की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, है ना। क्योंकि बेटा जो कुर्ता है ना उसको कुछ बोलेंगे नहीं, नाम किसका बदनाम होता है? बाप का होता है। किसका बेटा है? कोई भी कृत्य करेगा कोई, तो पहले उसके शिष्य है तो उसके गुरु का नाम बदनाम होगा, बाद में उसका होगा होगा। तो अपने ऊपर जो अधीनस्थ व्यक्ति उनके पद पर रहते हुए उनके पुत्र या शिष्यों ने ऐसा कार्य ना करे जिसके कारण उनका, तो इन्होंने कुबेर के पुत्र होने के नाते धन का मत इसके नारद जैसे संत का अवमानना कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। तो वहां पर श्रीया थी लेकिन वह नशे में नहीं थी, इसके कारण वो संभल गई और देखते ही तुरंत भागी, अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये भाई नंग धड़ंग के नंग धड़ंग खड़े रहे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो नंगे रहते वो लोग चेतन नहीं होते। उदाहरण देते पेड़ का, जब प्रभुपाद लॉस एंजलिस के बीच पर भ्रमण कर रहे थे तो लॉस एंजलिस बीच अमेरिका की सारी बीच तो नंग धड़ंग लोगों से भरी पड़ी रहती है। तो प्रभुपाद बोलते ये सब लोग पेड़ बनेंगे। क्या बनेंगे? पेड़ बनेंगे। तो जिनको ज्यादा नंगा रहने की आदत होती है वृक्ष, क्योंकि वृक्ष नंगा होता है। और नारद मुनि ने विशेष शाप इस प्रकार दिया, केवल पेड़ के रूप में जन्म खड़े रहे ऐसा नहीं, उनकी चेतना बनी रहे। और कितने साल? 100 साल देवताओं के, मतलब 36,500 साल वो खड़े रहे नंद बाबा के आंगन में। और उन्होंने कृपा इस तरह की कि इनको ऐसे वैसे जगह पर खड़े नहीं किया, है ना, ब्राजील के जंगलों में या अफ्रीका के जंगल में नहीं भेज दिया, है ना, वहां पड़े रहे तो कभी उद्धार होता ही नहीं। तो साधु का दंड मतलब सबसे बड़ी कृपा। गुरु, साधु, माता पिता, ये जब दंड देते हैं ना, इसमें कभी भी हमें उनके प्रति घृणा ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने क्यों मुझे मारा, इन्होंने क्यों मुझे दंड दिया, बल्कि उस दंड में हमें अपना कल्याण देखना चाहिए। गुरु डांटता है तो कभी नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे को क्यों डांट रहे। तो नारद मुनि ने जो दंड दिया तो बहुत बड़ा कल्याण, उन्होंने देखा इतने बड़े पद पर होते वो इतने नीचे गिर चुके हैं, अपने स्वामी के गुरु भोगी हो गए थे एक दूसरे से। क्या हो गए थे? गुरु भोगी। और कहां वो विहार कर रहे थे? कैलाश पर्वत में मंदाकिनी बहती उसके किनारे में जो शिवजी का बगीचा है उसके अंदर वो नंगे सरोवर में स्नान कर रहे थे, मतलब वो गुरु भोगी हो गए थे, अपने गुरु का संसाधनों का भोग कर रहे थे ना, तो वो भी एक अपराध। तो इतना इसलिए इतने नीचे गिर गए थे, नारद मुनि लिखते कि इतने पतित हो चुके थे, इनका उद्धार करना जरूरी था। इसलिए नारद मुनि ने शाप दिया, जाके आप नंद बाबा के आंगन में नल कुबेर के दो यमलार्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहो। और जैसे ही शाप मिला सारी नशा छूट गई और होश आ गया उनको, और होश आ गया तो अब समझ में आई नारद मुनि है। तब तक नारद मुनि दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अज्ञान फैला था ना, जब से नशा उतारी गुरु जी ने, है ना, एक प्रकार से गुरु हो गए ना, उनको कृपा की मतलब गुरु हो गए नारद मुनि। तो नारद मुनि जब दिखे तो वास्तव में उनको दिखाई दे, तब वो रोने लग गए, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो साधु तो सॉफ्ट हार्टेड होता है, तुरंत पिघल जाता है। तो उन्होंने जैसे ही दंडोत प्रणाम किया, क्षमा मांगा, नारद मुनि ने कोई बात नहीं, परंतु आपको दंड तो अवश्य मिलेगा और आपका उद्धार स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। तो ये अमलार्जुन प्रसिद्ध हमारी दामोदर लीला में भगवान को स्मरण हुआ आया, जब वो उखल से बंधे थे, संध्या की बेला आ गई, तब उनको अपने भक्त के द्वारा दिया गया। इसलिए भक्त और भक्त भगवान का संबंध बड़ा बेजोड़ है ना। तो इसलिए अपना भक्त कुछ भी कर भगवान को याद रखना पड़ता है ना, इसलिए भगवान जल्दी भक्ति देते नहीं है, क्योंकि उसका सब कुछ भगवान को वहन करना पड़ता है। तो उसका दास भी उसकी आज्ञा का, ऐसे भगवान को कृष्ण को आज्ञा का ही पालन करना पड़ा ना नारद मुनि के, क्योंकि उन्होंने शाप दिया, लेकिन कौन उद्धार करेगा? कृष्ण करेगा। अभी कृष्ण को जानबूझकर उखल को बंधना पड़ा, ये तो कोई जरूरत नहीं भगवान को बंध की, क्यों? उनको पता था कि मेरे भक्त ने वचन दिया था, अभी इनको पेड़ों को गिराने के लिए भगवान उखल को लेके गए। और फिर वहां पर वो दोनों यमला और अर्जुन का उखल से पेड़ों को गिराते और तब दोनों का तभी भी चेतना बनी रहेगी, कहा नारद मुनि ने, उद्धार होने के बाद भी, ताकि वो पुनः गलती याद रहे उनको हमेशा कि हमारी ये गलती के कारण हमें इतने वर्षों तक दंड मिला था, तो आगे चलकर हम ऐसी गलती दोबारा ना करें। तो इसीलिए उन्होंने नारद मुनि चेतना, पेड़ के वृक्ष में भी चेतना बनी रही, एक्चुअली पेड़ों में चेतना बहुत कम होती है ना, 5 प्रकार की चेतना है ना, मुकुलित, विकसित, उन्मूलित, पूर्ण मुक्त, ऐसे पांच प्रकार की होता है। ये सबसे अविकसित चेतना वाले पेड़ है। पेड़ जो होते हैं वृक्ष, वो अविकसित चेतना होती है, इसलिए आप उनको काटो मारो कुछ भी करो उन्हें इतना दर्द नहीं होता है। हमें थोड़ा सा एक चिमटी भी ले जाए तो दर्द होता है, लेकिन आप उसको पूरा पेड़ भी काट देते तो उनके अंदर ना खून निकलता है ना कुछ नहीं। तो लेकिन नारद मुनि ने कहा कि आपकी चेतना बनी रहे, क्योंकि आपको पल पल स्मरण हो कि गलती का ऐसा, तब कितना पश्चाताप होगा, अरे अरे मैंने नहीं करना चाहिए था। जब हमारी कुछ बुरी घटनाएं हमें याद आ जाती है ना, कुछ गलत किया हुआ, तो वो दिन हमारा खराब हो जाता है ना, पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था उस भक्त के साथ। तो ये चेतना और ये याद रखने की शक्ति जो भगवान देते हैं ना, गीता में कहते हैं ना भगवान, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। स्मृति भी भगवान ही देते हैं और स्मृति भी भगवान देते हैं। तो नारद मुनि भी भगवान कहलाते हैं, क्योंकि भगवान की कुछ शक्तिमत्ता नारद मुनि के अंदर है। तो उन्होंने वो भी वरदान दिया कि आपकी स्मृति बनी रहे, नहीं तो विस्मरण और स्मृति देने का काम केवल कृष्ण का है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को भी वो शक्ति प्रदान करते हैं। उसी के कारण नारद मुनि ने उनको शाप दिया कि आपकी स्मृति बनी रहे। तो इस कथा के अंतर्गत हमें कुछ सीखने को मिलता है कि भले हम भक्ति करते हुए हमारे पास धन आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, पोजीशन आ जाए, तो सावधान रहना है, क्योंकि जितना बड़ा पोजीशन आता है तब आपकी तरफ देखने वालों की नज़र भी उतनी बढ़ जाती है, आकांक्षाएं उतनी बढ़ जाती है। कभी कभी हम अपराध कर बैठे, वो तो उन्होंने पाप किया या अपराध भी किया, हम भक्ति में कभी अपराध कर जाते तो अपराध का फल पाप से अधिक ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इन कथाओं से यही है कि इन चार नशाओं से हमें हमेशा दूर रहना है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी, हमारी एजुकेशन की जो डिग्री होगी या हमें कुछ पोस्ट मिला होगा या हम बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, अधिक अधिक श्लोक रिसाइट किया, तो इनसे ये नहीं समझना चाहिए मुझे विशेषकर कि हमें सेवा के लिए मिला है, ना कि हमें दुनिया को दिखाने के लिए मिला है। तो ये जो भी चीज़ हमारे पास आज भक्ति के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु के द्वारा, वैष्णव के द्वारा मिली है, वो हमें अपने दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि अपने आप को प्रदर्शित या प्रेजेंट करने के लिए। तो इन चीज़ों से हमें बचने के लिए ये कथा अच्छी तरह है कि हमें इनसे सीखना है कि हमें पास जो भी कुछ मिले उसे हम भगवान की सेवा में लाएं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान गर्मा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर शुद्ध भक्ति का वर्णन किए हैं और अन्य तीन प्रकार की भक्ति का भी वर्णन किए। इस समय की मर्यादा है, हमें 8:30 बजे तो चांस दिया था परंतु 5 मिनट अधिक हो गए, तो क्षमा कीजिए। और महाराज जी कोई प्रश्न है आपका या कोई टिप्पणी करना चाहे तो जरूर करिए। कोई वैष्णव, हरे कृष्णा, मेरे से द्वारा कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न? महाराज जी कुछ प्रकाश डालिए। और
कृष्ण प्रभु,
प्रभुपात कीजिए। यस प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। आपने कहा प्रभु जी भक्ति चार प्रकार की होती है, तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे क्या?
मैंने वही कहा पहले कि समय है उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो तीनों में भौतिक कामना होती है। स्पष्ट सारांश रूप में कहा जाए तो तीन जो भक्ति है उसमें भौतिक कामना होती है, लेकिन शुद्ध भक्ति है उसमें भौतिक कामना नहीं होती, आध्यात्मिक कामना होती है, इच्छा होती है। इच्छा रहेगी लेकिन अंतर इतना है कि ये तीनों जो होते हैं, कर्म मिश्रित मतलब स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, जैसे ध्रुव महाराज ब्रह्म का पद प्राप्त करना चाहते थे, जे उतना बड़ा राज्य, तो ये भौतिक कामना है। चाहे ब्रह्मलोक क्यों प्राप्त करने की इच्छा हो, स्वर्ग ऊपर के लोक, धन दौलत, ये प्राप्त करते हुए भगवान के शरण में आता है। गीता में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। इसमें भी ये चारों जो है ये भक्त है, क्योंकि भगवान के शरण में आते हैं। भक्ति शब्द इसलिए लगाए कि वो शरण में कृष्ण के आते हैं, राइट। तो इसीलिए वहां कर्म मिश्रित भक्ति, मिश्रित मतलब मिश्रण, है ना, दूध जैसे दही और हनी को मिला जाए तो उसका मिश्रण क्या बनता है, मधुपर्क, है ना, दो चीजों का मिश्रण से कुछ चीज बनती है। तो मिश्रित है मतलब भक्ति भी है और भौतिक इच्छा भी है, तो दोनों का मिश्रण से वो बना, इसलिए वो शुद्ध नहीं है, है ना। अब
जल में दूसरा कलर डाल रहे तो जल शुद्ध रहेगा क्या? नहीं, जो नीला कलर डाला तो नीला बन जाएगा, लेकिन जल भी है और कलर भी है तो मिश्रित हो गया। तो भक्ति करते करते हमारे हृदय में भले कामना हो भौतिक, इसलिए कर्म मिश्रित मतलब संसार की पद प्रतिष्ठा धन दौलत जो भी इच्छा करता है वो कर्म मिश्रित हो गई। ज्ञान मिश्रित, इस भौतिक जगत से परे एक ब्रह्म ज्योति है और जो ब्रह्म में विलीन होने की जो कामना करते वो ज्ञान मिश्रित। ज्ञान के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालते? हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो संसार मिथ्या है, ये ज्ञानियों का निष्कर्ष है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, जगत अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। तो ये मायावादी लोग ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि कर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म में आनंद, ब्रह्म में आनंद है, ब्रह्म में सुख है थोड़ा बहुत, इतना नहीं जितना भक्ति में है। तो वो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं जैसे चतुष कुमार, ये ज्ञान मिश्रित में आते हैं। और योगी योग मिश्रित, तो योगिया क्या सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने लिखा ना सारूप्य सामीप्य सालिक्य साष्ट साहिज्य, तो ये पांच प्रकार की मुक्ति है। तो इस मुक्ति पाने की जो इच्छा रखते हैं उनको योगी कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ पाने की इच्छा है। लेकिन शुद्ध भक्त वो है वो कुछ भी स्वतंत्र की इच्छा नहीं करता है कि मुझे चाहिए। वो क्या इच्छा करता है? मैं कृष्ण को कैसे प्लीज करूं, मैं कृष्ण को संतुष्ट करूं, है ना। जैसे गोपियां हमेशा, विशेषकर राधा रानी, एक मैं पढ़ रहा था ब्रज भक्ति विलास करके, उसमें राधा रानी बांसुरी से ईर्ष्या करती है और बांसुरी से क्रोधित होती है। तो वो क्यों? तो बोले मैं तो भगवान को सहायता कर रही हूं उनका संगीत बजाने में। नहीं, बोले तू सहायता नहीं कर रही है, तू भगवान के हाथ में पड़ी हुई है और भगवान को तेरे लिए तिरछा पैर करके इतना तकलीफ में खड़ा रहना पड़ता है। देखो राधा रानी का कृष्ण को प्लीज, मुझे छोटा सा भी कष्ट और कृष्ण का राधा रानी सहन नहीं कर सकती है। इसमें उसकी इच्छा है कि भगवान को प्लीज करने की इच्छा है, इसलिए राधा रानी शुद्ध भक्त है। ये कृष्णा हमेशा बंसी बजा के ऐसे खड़े रहते हैं, तो आप खड़े रहिए एक पैर पर एक पैर तड़ा करके। हम बैठे मारकर भी ठीक से खड़े बैठ नहीं पाते, पालथी मार पर इधर उधर एक घंटे के अंदर कितना हिला लेते हैं। अब भगवान को खड़ा रहना है, तो राधा रानी सोचती है कि ये बंसी बदमाश है, हमेशा भगवान के हाथ में खड़े भगवान को खड़ा रखती है, कितना कष्ट होता है। तो ये राधा रानी का भाव है, ये कृष्ण को हमेशा प्लीज करे। गोपियां, एक बार क्या हुआ, नारद मुनि भगवान के पास गए, नारायण के पास, और कहने लगे अब थोड़े आज चिंतित दिखाई दे रहे प्रभु। बोले क्या करूं नारद जी, आज मेरा सर बहुत दिख रहा है। बोले दवाई लगा लीजिए, धन्वंतरी भगवान के पास तो बहुत सारी दवाई है, ले लीजिए लगा लीजिए। तो बोले वो दवाई से मेरे सर नहीं दर्द हुआ। बोले कौन सी दवाई से होगा? तो मिले भक्तों की यदि चरण रज मिल जाए तो मेरा सर पर लग जाए तो मेरा सर दर्द बंद हो जाएगा। अभी नारद मुनि तो भक्त थे तो उन्होंने देनी चाहिए थी ना, नहीं, वो भक्त ढूंढने लगे दूसरे। तो गए अनेक अनेक भक्तों के पास, तो नारद मुनि को चिंतित देखकर, नारद मुनि आज चिंतित आप दिखाई दे रहे, आप तो हमेशा नारायण नारायण प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो आज चिंता का कारण क्या? क्या करे, मैं वैकुंठ गया, नारायण जी थोड़े सी बीमारी हो गया, उनको सरदर्द है। तो बोले ठीक है, क्या बड़ी बात है, दवाई ले ठीक हो जाए। बोले उनको दवाई विशेष प्रकार की चाहिए। बोले क्या? बोले भक्तों की चरण आपकी दीजिए। तो बोले नहीं, हमको कहीं नरक में जाना है, हमारी चरण भगवान के सर पर नहीं। तो जब अंत में गोपियों के पास गए तो गोपियों ने बोला नारद जी क्या कारण है आपकी चिंता का? तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि जब तक भगवान शुद्ध भक्तों की चरण रज नहीं मिलेगी तब तक भगवान का सरदर्द ठीक नहीं होगा। ऐसी बात है, उन्होंने उठाई अपने चरणों की जड़ भर भर की दी। बोले ले जाइए ले जाइए। नारद मुनि आश्चर्य हो गए, आपको डर नहीं लगता? बोले किस बात का डर, नरक में जाने का? बोले हमारे नरक में जाने से और हमारी चरण धूली लगाने से यदि हमारे स्वामी खुश हो रहे ठीक हो रहे तो ऐसा नरक में जाना हमको पसंद है। तो यह हमें क्या है, गोपियों की अपनी इच्छा है, कृष्ण को प्लीज करने की इच्छा है। एन कहना पर प्रकार है ना, कृष्ण हमारे संतुष्ट होने चाहिए। तो भक्त 24 घंटे एक 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 सेकंड केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीता है, वही शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद 22 घंटे पूरे 24 घंटे से पकड़ लीजिए, 2 घंटे सोते थे, इसका मतलब वो सोते नहीं थे, सोते सोते भी भगवान की लीलाओं का चिंतन करते थे। तो मतलब 24 घंटे कृष्ण को प्लीज करते थे, इसलिए तो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो पाया पूरे वर्ल्ड में। तो ये शुद्ध भक्त, और हम 23 घंटे 59 मिनट भौतिक चिंतन होता है, एक मिनट भी हमारा ठीक से चिंतन नहीं होता है। तो हमारी अवस्था ये है, इसके लिए हम कर्म मिश्रित भक्त लोग हैं, बहुत सारी कामना अंदर है, ये चाहिए वो चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, पोस्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए, अमेरिका चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, बहुत सारी कामना है। तो अभी अभी शुद्ध भक्ति बहुत दूर है, तो शुद्ध भक्ति और कर्म मिश्रित भक्ति ये अंतर है। ओके प्रभु हरे कृष्ण। तो हमें प्रयास करना शुद्ध भक्ति के लिए, तो प्रार्थना करते प्रभुपाद वैष्णव सबसे कि शुद्ध भक्ति इसी जन्म में प्राप्त हो सके, है ना। प्रभुपाद बोलते फिनिश योर बिजनेस इन वन लाइफ टाइम, इसी जीवन में फिनिश करना है, क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है ना आगे, अभी इतना बिकट है तो आगे क्या क्या स्थिति होगा, इसलिए बेटर है कि प्रयास हमारा यही रहे हमेशा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, है ना। प्रभुपाद तो कहते थे कि इस्कॉन के भक्त ज़्यादातर 75% स्वर्गलोक तक जाएंगे, है ना, बहुत सारी कामना है ना, क्योंकि शुद्ध भक्ति इतना इजी नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है ना। लेकिन प्रयास हमारा वही होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद बोलते मेरे मूवमेंट में आपको सब कुछ प्राप्त होगा, धन भी, अमेरिका भी, स्वर्ग भी, हाँ सब कुछ मिलेगा, शुद्ध भक्ति भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए उतना तपस्या, उतना प्रयास और उतना तुनादुपी सुनीचना तरोपी सहिष्णुना मान न मान देना कीर्तनीय, वो होना पड़ेगा, है ना, तब तक नहीं, क्योंकि चैतन्य शिष्टाष्टकम फॉलो कर लिया, शुद्ध भक्ति इसी जीवन में मिल जाएगी, है ना। तो प्रयास करते हम सभी, विशेषकर मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, बार बार गिर रहा हूँ, बार बार उठ रहा हूँ, तो आप आशीर्वाद करें कि भगवान को प्लीज कर सकूँ, और जल्द से जल्द, है ना, हमारे गुरु जी से मिला अभी मैं 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द प्रभुपाद को ऑफर करो ठाणे का मंदिर, तो इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि ठाणे का मंदिर हम प्रभुपाद के 125वीं व्यास पूजा पर ऑफर कर सके, प्रभुपाद को उनको प्लीज कर सके। तो आप सभी वैष्णव से हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हम मिली हुई हमें सेवा कंप्लीट कर सके थोड़ा जल्दी से जल्दी। हरे कृष्णा। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।